ठीक है, हॉस्टल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जहां नूर रह सकती है वही काफी है। लेकिन फिर भी हॉस्टल को लेकर इतनी चिंता क्यों? फरीद ने इकबाल से पूछा। नहीं नहीं, मसला कोई बड़ा नहीं है, इकबाल ने धीरे से कहा। लेकिन ये घर उसकी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है, रोज आना जाना मुश्किल होगा। फरीद ने गंभीर होकर पूछा, सच सच बताओ, कहीं नूर ने तो तुमसे कुछ कहा नहीं? मतलब उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ है तो मुझे बता सकती है। फरीद को लग रहा था कि शायद नूर ने ही इकबाल से कुछ कहा होगा। इस बीच रेहाना बेगम और सादिया भी लॉन में आ रही थीं। वे भी उनकी बातचीत सुन रही थीं चुपचाप। नहीं नहीं, नूर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इकबाल ने तुरंत कहा। अगर कहती है तो कहने दो, फरीद ने हंसते हुए कहा। ये उसका ताया का घर है, उसका हक है हम पर, सही बात है ना? वो रेहान की तरफ देखकर मुस्कुराया, जो चुपचाप उनके बीच की बातें सुन रहा था। इकबाल का चेहरा थोड़ी उदासी से भर गया। मगर लोग क्या कहेंगे, उसने कहा। दुनिया कहेगी कि मैंने अपनी बेटी को सिर्फ आपके पैसे और घर को देखकर यहाँ छोड़ा। फरीद ने पूछा, किसने कहा ऐसा? क्या फ़र्क पड़ता है किसने कहा, इकबाल ने मायूसी से कहा। मगर हम किसी का मुंह नहीं रोक सकते। लेकिन मैं रोक सकता हूँ और मुंह बंद भी कर सकता हूँ। मुझे बताओ कौन है, रेहान ने पूछा। क्या अरमान ने ऐसा कहा, फरीद ने सोचा, क्योंकि उसने देखा था कि नूर और अरमान के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी थी। जाओ अरमान को बुलाकर लाओ, फरीद ने रेहान से कहा। नहीं नहीं, अरमान ने ऐसा नहीं कहा, इकबाल ने जल्दी से रोका। मेरे रिश्तेदारों ने कहा है कि उन्हें लगता है कि आपके बंगले और गाड़ी के लिए मैंने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा है, इकबाल ने उदास चेहरे के साथ कहा। फरीद ने समझाया, तुम उन छोटी सोच वाले लोगों की वजह से खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, कहने दो जो लोग कहते हैं। बात मेरी नहीं, मेरी बेटी की है भाई, इकबाल ने कहा। अरे हाँ, फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपनी बेटी समझकर ही कह रहा हूँ, उसे यहीं रहने दो। मगर लोग क्या कहेंगे, इकबाल ने चिंता जताई। हॉस्टल में भी यही बातें होंगी। तुम चिंता मत करो, फरीद ने कहा, हम उसे अपनी हिफाजत में रखेंगे, सब सही रहेगा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको डैड पर भरोसा है ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं, इकबाल ने हंसते हुए कहा। तो ठीक है, रेहान ने कहा, डैड की जुबान है और मैं कह रहा हूँ, नूर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी सुरक्षा, उसकी भलाई मैं खुद देखूंगा। वो आपकी बेटी है और आप मेरे चाचा हैं, मैं नूर का ताया का बेटा हूँ, एक भाई की तरह उसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर इकबाल का दिल हल्का हो गया। उसने रेहान को धन्यवाद देते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, एहसान रहेगा। फरीद का चेहरा खुशी से खिल उठा। रेहाना और सादिया भी मुस्कुराई। तो फिर भाई साहब, नूर हमारे पास रहेगी, रेहाना बेगम ने संतोषपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। इकबाल का मन हल्का था, नूर को वहीं छोड़कर जाना उसे बिल्कुल सही लग रहा था। रात को वो आराम से सोया, क्योंकि अब उसे नूर की फिक्र नहीं रही थी। हालांकि उसे अपनी फूफी के दामाद की वजह से उसे वहां पहले छोड़ना मुश्किल लगा था, लेकिन अब वो जानता था कि नूर पूरी तरह से सेफ है। अगली सुबह इकबाल पूरे परिवार से मिलने के लिए गया। फरीद खान, रेहाना बेगम, रेहान, सादिया और नूर सभी लॉन में इकबाल का इंतजार कर रहे थे। फरीद खान ने इकबाल से साफ साफ कह दिया, किसी वैन का इंतजाम मत करना, यह हमारी जिम्मेदारी है, नूर को यूनिवर्सिटी छोड़ना और वापस लाना। इकबाल थोड़ी बहस करने लगा, लेकिन इसके लिए वैन ही लगवानी चाहिए, ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन फरीद खान के साथ साथ रेहान और रेहाना बेगम ने भी कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। आखिरकार इकबाल को मानना पड़ा। जाने से पहले उसने नूर से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर कहा है कि तुम अपने सामान का ख्याल रखना। इकबाल को पता था कि नूर थोड़ी लापरवाह है। नूर जल्दी से बोली, पता है, मैं अपना सामान अपनी सहेलियों में नहीं बांटूंगी, किसी के साथ जावा नहीं चलाऊंगी और किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी। पूरी फैमिली नूर की बातें सुनकर हंस पड़ी। रेहाना बेगम मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, मैं हूं ना, आपकी हर बात मानती हूँ, नूर भी मुस्कुराकर हाँ कहती है। फिर नूर ने प्यारी सी आवाज में कहा, भाभी, मैं ऐसे आप ही के भरोसे पर छोड़कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। बिल्कुल ख्याल रखेंगे, फरीद खान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इकबाल ने सभी से विदा ली और धीरे धीरे चला गया। उसका दिल हल्का था और उसे भरोसा था कि नूर सुरक्षित हाथों में है। रेहाना बेगम ने सादिया को अपने पास बुलाया और अपना क्रेडिट कार्ड उसे थमा दिया। तुम नूर को साथ लेकर जाओ और उसे शॉपिंग करवा देना, अब वो हमारे साथ रहेगी तो उसके कपड़े भी हमारे हिसाब से होने चाहिए, मेरे बेटे ने इसकी जिम्मेदारी ली है, रेहाना बेगम ने गंभीर लेकिन मुस्कुराते हुए कहा। सादिया ने तुरंत उत्तर दिया, जी बताइए हमें, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। ताई अम्मी, आप रेहान से बहुत प्यार करती है ना? हाँ, वो मुस्कुराई और कहा, और उसकी ली हुई हर जिम्मेदारी को निभाना मेरा फर्ज है। ये कहना रेहाना का नूर की जिम्मेदारी पर था, क्योंकि रेहान ने आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। रेहाना बेगम चाहती थी कि सादिया रेहान के साथ खड़ी रहे और नूर का पूरा ख्याल रखे। रेहाना बेगम और सादिया दोनों हॉल में आकर बैठ गईं। उनके कपड़े पहले ही तैयार आ चुके थे और वे
वहीं उन्हें देख रही थी। नूर भी अब कमरे से निकल कर आ गई और उनके पास बैठ गई। सादिया ने नूर से कहा, तुम भी अपने लिए कुछ कपड़े देख लो, अगर मैं तुम्हें देती हूँ तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपने पुराने कपड़े दे रही हूँ, चलो मेरे साथ बाजार चलो। तभी हॉल का दरवाजा खुला और माहिरा अंदर आई। आज चांद कहाँ से निकल आया, रेहाना बेगम ने हंसते हुए कहा। आज सोचा अरमान रोज आता है, मैं भी आ जाऊँ, माहिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे तुम अभी तक यहीं हो, माहिरा ने नूर को देखकर कहा। नूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सादिया ने बीच में कहा, तुम भी अपने लिए कोई ड्रेस देख लो। माहिरा ने कहा, लेकिन इतनी महंगी ड्रेस का बजट तो नहीं होगा। सादिया के हाथ में जो ड्रेस थी वो काफी महंगी और भारी लग रही थी। नूर ने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। रेहाना बेगम की नजरें भी नूर की तरफ थीं और वे चुप रह गईं। रेहान ने चुपचाप नूर की स्थिति को समझा। रेहाना बेगम ने कहा, इसे बजट की कोई दिक्कत नहीं, जिस चीज पर हाथ रखेगी ताया उसे ले देंगे। तभी बाहर से रेहान और अरमान अंदर आए। माहिरा ने फिर बात शुरू की, अगर ताया अबू नहीं होंगे तो तुम रेहान का कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए चलो। माहिरा को शुरू से रेहान पसंद था, लेकिन रेहान को माहिरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ये इसलिए कह रही थी ताकि रेहान कोई अनचाही बात करे और माहौल में हलचल पैदा हो। सादिया ने पूछा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड क्यों, तुम रेहान के साथ जाओ, उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, शॉपिंग भी करा देंगे, सादिया ने कहा। सादिया को माहिरा पसंद नहीं थी, क्योंकि माहिरा को रेहान पसंद था। उसका मन था कि सादिया और रेहान की शादी ना हो, इसी कारण सादिया माहिरा को नीचा दिखाना चाहती थी। नहीं, मैं अरमान के साथ जाऊंगी, नूर ने जल्दी कहा। उसने पहले ही शॉपिंग प्रोग्राम के बारे में योजना बना ली थी, इसलिए जल्दी प्रतिक्रिया दी। ये सुनकर सभी थोड़े कन्फ्यूज हो गए। बिल्कुल नहीं, रेहान ने कहा, तुम्हें याद है ना तुम्हारे अब्बा ने क्या कहा था, तुम्हारी अम्मी ने भी कहा है कि तुम किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं रख सकती, इसलिए तुम अरमान के साथ नहीं जा सकती। लेकिन लड़के के साथ मना किया है, अरमान के साथ जाने से थोड़ी रोक है, नूर ने कहा। सबका ध्यान नूर की तरफ गया। माहिरा गुस्से में थी, क्योंकि ये उसके भाई की बात थी। रेहाना बेगम मुस्कुराई और सादिया भी मुस्कुराई। तो इसका मतलब ये है कि अरमान लड़का नहीं है, रेहान ने पूछा। अम्मी ने मुझे लड़कों से दोस्ती करने से मना किया ताकि कोई मुझे ट्रैप न कर दे, लेकिन अरमान ने मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया, तो अब उनके साथ जाने में कोई समस्या नहीं, नूर ने कहा। अरमान का खून खौल रहा था, उसकी नूर बार बार उसे बेइज्जत कर रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आपने मुझसे माफी मांगी थी ना, रेहान ने तरफ देखा।
सादिया मुस्कुराकर अरमान की ओर देख रही थी और रेहान भी अरमान को देख रहा था। रेहाना बेगम की हंसी भी बाहर निकल रही थी, लेकिन वो इसे दबा रही थी।